भगवान श्री शुक्र गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के तात्पर्य की पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न कर अपनी लुप्त चेतना प्राप्त की। इस तरह वही पूर्ववत सृष्टि का पूर्ण निर्माण कर सके। यहाँ पर ब्रह्मा जी की विश्व जी का उदाहरण दिया गया है। ब्रह्मा जी भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार है। वे प्रकृति के रज गुण के अवतार होने के कारण भगवान द्वारा सुंदर भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए शक्ति बदलते हैं। जो भी असंख्य जीवों में से एक होने के नाते वे अपनी सृजनात्मक शक्ति की कला को भूल सकते हैं। जीव की या विश्व जी जो ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र छींटी तक पाई जाती है, ऐसे प्रवृत्ति है जिसका शमन भगवान के विराट रूप के ध्यान द्वारा किया जा सकता है। यह अवसर मनुष्य योनि में प्राप्त होता है और यदि मनुष्य श्री भगवत के आदेश का पालन करके विराट रूप का ध्यान करना प्रारंभ कर देते हैं तो उसकी शुद्ध चेतना का पुनः उदय हो सकता है तथा साथ ही भगवान के साथ आपने नित्य संबंध की विस्मृति का निराकरण हो जाता है। ज्यों ही यह विस्मृति दूर हो जाती है त्यों ही व्यवसाय बुद्धि आ जाती है, जिसका यहाँ पर और भगवद गीता में भी उल्लेख हुआ है। जीव के इस सुनिश्चित ज्ञान से भगवान की प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है, जिसकी जीव को आवश्यकता होती है। ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतः भगवान के सहायक हाथों की संख्या भी अनंत है। भगवद गीता बल देकर कहती है कि भगवान की सृष्टि के कोने कोने में उनकी हाथ पांव मुंह तथा आंखें हैं। इसका अर्थ यह हुआ है कि जीव कहलाने वाले भगवान के आंशी उनके सहायक हाथ है और ये सब विशेष प्रकार की भगवत सेवा के निमित्त है। बद्ध जीव चाहे वह ब्रह्मा के पद पर ही क्यों न हो, मिथ्या अहंकार से उत्पन्न बहिरंग शक्ति के प्रभाव से इसी भूल जाता है। ऐसे मिथ्या अहंकार का निराकरण मनुष्य ईश चेतना कृष्ण भावन गॉड कॉन्शियसनेस प्राप्त करके कर सकता है। मुक्ति का अर्थ है विस्मृति की निद्रा से निकाल कर बाहर आना और भगवान की असली प्रेमा भक्ति को प्राप्त होना, जैसे कि ब्रह्मा के उदाहरण से स्पष्ट है। ब्रह्मा द्वारा की गई सेवा मुक्तावस्था में की जाने वाले सेवा का नमूना है और या तथाकथित परोपकार से भिन्न है, जो छुट्टियों तथा विस्मृतियों से पूर्ण होते हैं। मुक्ति कभी भी निष्क्रियता नहीं है, अपितु या मानवीय छुट्टियों से विहीन सेवा है। शनिवार शाम को इस्कॉन बड़ौदा मंदिर में श्रीमद् भागवत पाठ होते हैं, सुबह भी होते हैं, लेकिन सुबह के क्रम अलग है। सुबह का क्लास 11 स्कंद पर अभी चल रहा है और ये दूसरे स्कंद पर है। भगवद गीता में प्रथम अध्याय में भूमिका जो और भगवान के उपदेश का शुरू होते हैं दूसरा द्वितीय अध्याय में, और पहला अध्याय में भूमिका कैसे कैसे भगवद गीता कैसे भगवान अर्जुन भगवद गीता उपदेश अर्जुन को दिए हैं, किसी अवस्थ में है अर्जुन की दशा कैसे थी, तो ऐसे भूमिका है। और श्रीमद् भागवत तो उसमें भी पहला स्कंद में शुकदेव गोस्वामी की वाणी की शुरू नहीं होती है। श्रीमद् भागवत सनातन है, क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवत शब्द विज्ञान है, विज्ञान विशेष ज्ञान जो भगवान के बारे में है, और भगवान तत्व ज्ञान मतलब एकदम निरूपित निर्धारित है, उसमें कोई कल्पना नहीं है, वास्तविक ज्ञान है भगवान के बारे में, क्योंकि ये ज्ञान भगवान से आते हैं। और चैने ब्रह्मा विद्या आदि का भी है वो भगवत के पहला श्लोक पहला स्थान पहला अध्याय पहला श्लोक में ऐसा लगे कि भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी को इस ज्ञान दिए है, वो ज्ञान हृदय में संचारित किया है। तो ये ज्ञान सनातन है, लेकिन दूसरे दूसरे आकार में आते हैं, वेद शास्त्र के मंत्रों निर्दिष्ट इसको वेद शास्त्र का परिवर्तन करने का कोई प्रश्न नहीं होते, वैदिक मंत्रों सब जैसे ही वैसे है अनादिकाल से और वैसे से, लेकिन पुराण शास्त्र वो भी सनातन है, स्मृति शास्त्र श्रुति स्मृति श्रुति मूल वेद और स्मृति वेद से अभिन्न है, लेकिन स्मृति का आकार कभी कभी परिवर्तित होते हैं काल के अनुसार, लेकिन उसका सार अंश सदैव एक ही होते हैं। जैसे कि भगवद गीता वो भी स्मृति है, श्रुति भी है, क्योंकि श्रुति में उपनिषद होते हैं वो भी गीता उपनिषद, और क्योंकि यह स्वयं पद्मनाभ से मुख्य पद्मानिश्रिता श्रुति का मतलब जो डायरेक्टली साक्षात भगवत उक्ति है, तो उस प्रकार भी भगवद गीता श्रुति है। लेकिन सामान्यतः क्योंकि गीता महाभारत का एक अंश है, इसलिए स्मृति जैसे मानना है सामान्यतः। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे अनेक श्लोक बचा करत राम नाम किंचित अस्ति धनंजय धनंजय अर्जुन का नाम अर्जुन का दूसरा नाम है धनंजय, जैसे ईश्वर सार्वभूता नाम विदेश अर्जुन अतिष्ठित अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन का नाम है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अव्ययम् बहुत दीर्घ काल के पहले हमारे परिपक्ष में भगवान के परिपक्ष में नहीं है, दीर्घ काल भगवान के लिए सेकंड जैसे। तो भगवान अर्जुन को बोले कि मैं बहुत दिन पहले विवस्वान सूर्यदेव को यही ज्ञान बताया था, তো সময় যা কৃষ্ণ ভগবান দেবস্বান বলে তো অর্জুন ধনঞ্জয় তো এইসব নাম নেই বলতে থে কিন্তু উস সময় দেবস্বান বলতে তো এসে সব গীত শ্লোকে মতাক্ষরাম নামে কিঞ্চিত আসছে ধনঞ্জয় বিদেশে অর্জুন শিষ্য তো নিশ্চয়ই উস সময় যাব শ্রীকৃষ্ণ দেবস্বান বলে এই জ্ঞান দেবস্বান বল দেখে পহলে ভি তো ভগবত গীতা জ্ঞান তো দূসরা পরম ভক্ত বতায় তো কবি কবি মানব জল জল ভি প্রয়োজন হদা ইদা হি ধর্ম সে গ্লানে অভিনেতা অধর্ম সে তদা মান সুচামি জব জব ধর্ম গ্লানি হতে হয় তব তব ভগবান স্বয়ং আসতে হ্যাঁ और इस भगवद गीता प्रचार करते हैं तो जब विवस्वान को भगवद गीता उपदेश प्रचार किया है भगवान निश्चय ही उसी श्लोक जिसमें धनंजय अर्जुन परंतप ये सब नाम आते हैं तो उसी प्रकार ही बोल तो श्लोक तो শ্লোক ও সময় পৃথক হওয়া চাইতেন লেকিন ও জ্ঞান যে ভগবান বিবস্বান দিয়ে ও অর্জুন দিয়ে তো একই এসলে শ্রীকৃষ্ণ বলে সব মাতে যোগ ভক্ত পরাজন ভক্ত মে সখা চেয়েছি রহস্যম হিয়েছে উত্তম ও একই জ্ঞান যে মে বহুদিন কে পহলে বিবস্বান বলে আজ ও একই রহস্যময় জ্ঞান তুমকে পচাত কিন্তু তুম মে পরম ভক্ত আর দোস্ত তো এসে পুরাণ শাস্ত্র আকার কবি কবি পৃথক হতে কবি কবি পৃথক হতে তো এস শ্রীমদ ভাগবত পহলে সূত্র রূপ মে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাজি বলে দূসরে দূসরে সময় মে দূসরে দূসরে জায়গা মে শ্রীমদ ভাগবত স্বর্গলোক মে ভি প্রচারিত হতে তো দূসরে দূসরে স্থান মে দূসরে দূসরে সময় মে শ্রীমদ ভাগবত কবি কবি বহুত সংক্ষিপ্ত হতে হ্যাঁ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাজি ব্রহ্মাজি চার শ্লোক মে শ্রীমদ ভাগবত বতায় বহুত হি সংক্ষিপ্ত রূপ মে ও কবি কবি বিশাল রূপ মে হতে শ্রীমদ ভাগবত যে হাম আজ পড়তে হ্যাঁ ও 18,000 শ্লোক মে রচিত হে ব্যাসদেব কে দ্বারা লেকিন স্বর্গলোক মে ও শ্রীমদ ভাগবত যে প্রচারিত হতে তো আবি ইয়াদ নেই হে বরাবর কিতনা হে এই কে 2,00,000 কে শ্লোক মে হে লেকিন কিউকি খাস ইস খালি কাল মে লোকম লোকম কি স্মৃতি শক্তি और साधारण बुद्धि बहुत कम होते हैं इसलिए हमारे लिए श्रीमद् भागवत खाली 18,000 श्लोक में व्यासदेव के द्वारा उपहारित होते हैं तो हम सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत बहुत बहुत বড়ি গ্রন্থ হ্যাঁ লেকিন একচুয়ালি এই শ্রীমদ ভাগবত যে হাম পড়তে হ্যাঁ ও পুরী ভাগবত সে সংক্ষিপ্ত তো এই ভাগবত হাম যে আজ হাম পড়তে হ্যাঁ তো ব্যাসদেব নে রচনা কি ও ভাগবত সুখদেব গোস্বামী ইনকে পুত্র কো
بتایا. اور اس کے بعد شکدیو گوسوامی پریکشت مہاراج کو بتایا جو ویاس دیو سے سنے, پھر پریکشت مہاراج کو بتایا. اور شکدیو گوسوامی, کیونکہ شکدیو گوسوامی مہا رسک بھکت تھے اور شریمد بھاگوت کا
سوکشم آرت منتن کر کے اور رس نکلا, اس لیے شکم اکارا مجھے جڑ سمجھے تھا. شریمد بھاگوت جو شکدیو گوسوامی ویاس دیو سے سن اور متا بن گئے شکدیو گوسوامی کی کتا دینے سے. ایسے ہوتے ہیں بھکتوں, ہم جب بھگوان کے بارے میں بولتے ہیں, بھگوان جو سب کے ہردے میں ہے, اس ادھیائے کا نام ہردے میں بھگوان, تو بھگوان بھکتوں کو وشیش ساکشتکار دیتے ہیں, کیونکہ بھاگوت تتو وشے اسیم ہے. بھگوان کے بارے میں کوئی سب کچھ نہیں جان سکتا. بھکتوں جو بھگوان کے بارے میں بولتے ہیں, بھکتوں جو شدھ بھکت ہے, تو بھگوان سے وشیش کرپا شکتی جو کہ بھگوان کے بارے میں بہت کچھ بولتے ہیں جو بھکتوں نہیں جانتے, وہ بول کتا دینے کے پہلے بھکتوں نہیں جانتے تھے کہ میں ایسے تو ہوں گا, اور ایسے ساکشت تھا بھی نہیں تھا. لیکن بولنے کا سمے بھگوان شدھ بھکتوں کے جیوا پر اپاستھت ہوتے ہیں اور شدھ بھکتوں کو وشیش شکتی دیتے ہیں بھگوان کے ورنن کرنے کے لیے. تو ایسے شکدیو گوسوامی اس کے بارے میں بھی چیتانیہ مہاپربھو سوئم بول کی بھگوت تتو بولنے کے سمے اور زیادہ ساکشت کا اپلبدھ ہوا تھا بھگوان کی کرپا سے, کیونکہ چیتانیہ مہاپربھو سارووم بھٹاچاریہ کو اتھارو پرکار کے آج آورام شلوک آورام شمنی ہو وہ شلوک کو اتھارو آرت دیے تھے, وہ آشچاریہ تھا. تو کیسے ایک شلوک کو اتھارو آرت نکالنا ہے, تو شری چیتانیہ مہاپربھو وارانسی دھام میں ایک مائنر میں وستار وسترت روپ میں سناتن گوسوامی کو بھگوت تتو کیا بتایا. وہ سناتن شکشک بولتے ہیں, وہ شریمد شری چیتانیہ چارتامرت میں پنچ ادھیائے میں سناتن شکشک, تو اس میں تو کیسے جیو بدھ ہوتے ہیں, کیسے جیو مکت ہوتے ہیں, بھگوان کرشن کی وشیش گون اور اوتار پرنالی اتیادی وہ سب چیتانیہ مہاپربھو سناتن گوسوامی کو شکشا دی تھی. تو چیتانیہ مہاپربھو سناتن گوسوامی کو دوارکا لیلا برج لیلا سب کا سارانش بولے, اور بولنے کے بیچ میں क्रामसिक शिक्षा देने के बीच में अचानक चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रेम भाव आए थे चैतन्य महाप्रभु के हृदय में, और क्रामसिक शिक्षा भूल के चैतन्य महाप्रभु सनातन को कृष्ण के माधुर्य के बारे में बहुत कुछ बताया। और बाद में महाप्रभु सनातन को सुने के बताया कि मुझे नहीं मालूम था सब जो बल दिया था कृष्ण की माधुर्य के बारे में, तो मैं भी नहीं जानता था, वो मेरा हृदय नहीं था, लेकिन क्योंकि आप शुद्ध भक्त हो सनातन, तो आपकी संगति मिलके मैं प्रेरणा मिली ऐसे रहस्यमय और मधुर ज्ञान बताना। तो उसके बाद सनातन गोस्वामी महाप्रभु से निवेदन किया कि मैंने सुना कि आप
हरे कृष्ण मैंने सुना कि आप सार्वभौम भट्टाचार्य को अचार रूप में आत्मराम श्लोक की व्याख्या की, तो यदि आप प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे भी वो सभी अथार व्याख्या बताएं। ये महाप्रभु आम रामश्च मुनि और श्लोक बताए थे, और उस समय जब सार्वभौम भट्टाचार्य को बताए, उस समय चैतन्य महाप्रभु के हृदय में अठारह व्याख्या आया था, लेकिन जब सनातन को बताए क्या बोलते छोसा व्याख्या आए थे जो और ज्यादा आश्चर्यमय कैसे इतना सा व्याख्या। और चैतन्य महाप्रभु बोले कि क्योंकि वो चार शब्द है और मुनि शब्द है, तो इसका अर्थ है कि इस श्लोक के असंख्य अर्थ है, क्योंकि वो सभी जीव एक प्रकार के मुनि है, तो सभी जीव का शाश्वत संबंध है भगवान कृष्ण के साथ, तो इस श्लोक तो सभी जीव के संबंध में व्याख्या करना हो सकते हैं। तो ऐसे जितने भी जीव है इतने आम रामश्च मुनि और श्लोक का व्याख्या हो सकते असंख्य व्याख्या हो सकते। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में भगवान ने भक्ति भाव प्रकट करके भगवान ये रहस्यमय लीला विलास करते हैं गौर लीला। तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय में भी ऐसी प्रेरणा और साक्षात्कार होते हैं। तो भगवत तत्व और भगवत रस ज्ञान ये सब इतने गहने हैं और अपर्याप्त कि भगवान भी इनके निज गुण की सीमा नहीं जानते, इसलिए भगवान का एक नाम है अनंत। अनंत ये नाम का एक अर्थ है कि शेषनाग रूप में भगवान अनंत थे, जो बलराम से और बलराम कृष्ण से। तो अनंत देव देवी भक्ति भाव में भगवान है, लेकिन एक्चुअली बलराम और सभी दूसरे विष्णु रूप जो है तो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन सब सोचते हैं मैं भगवान कृष्ण के जन्म, मैं कृष्ण के जन्म, तो ये और एक रहस्य है। तो कैसे भगवान दूसरे रूप, दूसरे दूसरे असंख्य अवतार में असंख्य असंख्य रूप लेते हैं और सभी रूप में भगवान जैसे भाव लेते और भक्त भाव भी मैं कृष्ण का दर्शन। शेषनाग शेषनाग सदैव तो सभी इनके असंख्य मुख और असंख्य मुखों से सदैव कृष्ण के गुणगान करते हैं और एक मुख से तो कभी भी एक ही बात दो बार या अनेक बार नहीं बोलते, तो फिर भी कृष्ण के गुण के अंत तो कभी भी नहीं मिलते, इसलिए इनके नाम अनंत, क्योंकि कृष्ण के गुण अनंत है और अनंत नाग सदैव भगवान के गुणों की कीर्तन करते हैं और उसका अंत नहीं मिलते, इसलिए उनका नाम है अनंत। तो ऐसे व्यास देव इस श्रीमद् भागवत रचना की, विशेषकर कलिहत्त जीवों के लिए है। कृष्ण स्वधाम भगवते धाम ज्ञान दिव्य सह कला कलो नष्ट विषमेश पुराण। भगवान कृष्ण सूर्य जैसे तेजमय है, कृष्ण सूर्य सामा माया हो अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया और अधिकार। कृष्ण सूर्य जैसे है और जिसने सूर्य का तेज है उसमें अंधकार की उपस्थिति का कोई प्रश्न नहीं होते, क्योंकि अंधकार क्या है, सूर्य प्रकाश का अभाव या अनुपस्थिति। तो कृष्ण सूर्य जैसे है, जब जिसमें कृष्ण उपस्थित होते तो उसमें अंधकार, और जिसमें सूर्य उपस्थित है अंधकार का प्रश्न नहीं होते, जिसमें कृष्ण उपस्थित होते माया की उपस्थिति का कोई प्रश्न नहीं होते। तो कृष्ण सूर्य जैसे हैं और कृष्ण के साथ धर्म और वास्तविक ज्ञान सदैव युक्त होते हैं। तो जब कृष्ण स्वधाम गोलोक धाम लौटे जाते हैं तो धर्म और ज्ञान इस दुनिया में जैसे कृष्ण की उपस्थिति का समय तो ऐसे उपस्थित नहीं होते, लुप्त हो जाते। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन के बाद उपस्थित होते हैं भगवत शास्त्र रूप में, जो सूर्य जैसे है, विशेषकर कलो नष्ट दृश्य कालयुग के अंध जैसे जीवों के लिए है। इस भागवत शास्त्र सूर्य जैसे है, हम अंध हैं, वास्तविक मार्ग नहीं देखते, लेकिन अगर हम भागवत शास्त्र अध्ययन करते हैं और श्री कृष्ण भक्तों की श्रीमुख से सुनते हैं तो वो अंधकार जो हमारी दृष्टि को आवृत करते हैं तो वो निकल जाएगा और हम खुले अंकों से वास्तविक मार्ग भक्ति मार्ग देख सकते हैं। तो व्यास देखने विशेषकर कलो नष्ट दृशा कली हत जीवन के लिए श्रीमद् भागवत रचने के, या वो एक्चुअली रचना नहीं, मतलब नया सृष्टि नहीं है, वो श्रीमद् भागवत है। कृष्ण की लीला के बारे में, कृष्ण की स्थिति के बारे में, कृष्ण के नाम गुण रूप लीला के बारे में वर्णन है। तो भगवान वेदव्यास इनके हृदय से प्रेरणा मिलके और इतिहास, आध्यात्मिक इतिहास से ये सब संग्रह करके, संपादन करके इस श्रीमद् भागवत रचना की। और व्यासदेव उस समय जो रचना की वो पूर्ण थी, उसमें कोई त्रुटि दोष नहीं था। लेकिन उसके बाद जब शुभदेव गोस्वामी वो ज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान, भगवत शास्त्र जो व्यासदेव ने सुना, जब शुभदेव गोस्वामी फिर परीक्षित महाराज को बोले, तो उस समय तो एक ही ज्ञान जो व्यासदेव से मिला तो वो ज्ञान और रहस्यमय था, क्योंकि वो शुभदेव गोस्वामी का साक्षात्कार के साथ युक्त था, मिश्रित था। और शुभदेव गोस्वामी का साक्षात्कार और अधिक था, और शुभदेव गोस्वामी की व्याख्या इतनी मीठी थी कि व्यासदेव भी जो शुभदेव गोस्वामी के पिताजी है और आध्यात्मिक गुरु भी थे, और नारद मुनि जो व्यासदेव के गुरु है, तो दोनों और बहुत ऋषि मुनिगण उपस्थित थे शुभदेव गोस्वामी की कथा सुनने के लिए। व्यास और नारद दोनों महाजन, शुभदेव गोस्वामी भी महाजन, और व्यास और नारद वे भगवान के अवतार हैं, दोनों सच्चा वेश अवतार हैं। लेकिन वे भी शुभदेव गोस्वामी की भगवत कथा सुनने के लिए उत्साहित है। तो शुभदेव गोस्वामी जो कहे तो बहुत ऋषि मुनिगण भी सुनते थे। तो उसमें एक सुत गोस्वामी और सुत गोस्वामी, इसके बाद सुत गोस्वामी नैमिषारण्य ऋषि मुनिगण, शौनक आदि ऋषियों को, तो एक ही बात जो शुभदेव गोस्वामी से सुने तो एक ही बात शौनक आदि ऋषि को बताए एक ही बात। और सुत गोस्वामी भी कुछ खस बोलते थे, और शौनक मुनि भी बहुत कुछ महात्मा बनने बोलते थे। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सुत गोस्वामी को दिए थे। तो सुत गोस्वामी जो शुभदेव गोस्वामी से सुने शौनक आदि ऋषि को बताए, और वो वार्तालाप में शौनक सुत में और भी भगवत तत्व रहस्य, भगवत तत्व ज्ञान निकल जाए। तो सुत गोस्वामी की कथा के बाद व्यासदेव ये सब संग्रह करके फिर रचना की, और वो भागवत अभी हमारे पास है इस कलयुग में, इस पृथ्वी में। और वो भागवत जो हम पढ़ते हैं तो उसमें और भी है, श्रीधर स्वामी की भाषा और शुभदेव श्रीधर स्वामी के तत्पर्य देने के बाद, और बहुत महान वैष्णव आचार्यों भी सुखदेव को श्रीधर स्वामी के व्याख्या के अनुसार और व्याख्या दिए थे। और आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद वो सब पूर्व आचार्यों के तात्पर्य पढ़ के विचार करके इनके अंग्रेजी भाषा में तात्पर्य दिया है। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद तो कभी श्लोक पढ़ते थे और खुद का तात्पर्य थे, नहीं, प्रभुपाद 12 संस्कृत टीकाओं पढ़ के और इनके गुरु महाराज बंगाली भाषा की पढ़ के विचार करके ध्यान करके अंग्रेजी में भक्ति वेदांत पढ़ कर रचने किए थे। तो प्रभुपाद के तात्पर्य में सभी महान पूर्व आचार्यों के उपदेश का सार भी है। तो यही भागवत हम पढ़ते हैं और पहले स्कंध में बहुत महत्वपूर्ण उपदेश और ज्ञान मिलते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी की वाणी का शुरू होते हैं इस दूसरे स्कंध में, तो क्रामसिक रूप में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं भगवत उपलब्धि कैसे होते हैं। तो पहला अध्याय में इस दूसरे स्कंध में द फर्स्ट स्टेप्स इन गॉड रियलाइजेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, ईर्ष अनुभूति का शुभारंभ। और मतलब उसमें आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने की आवश्यकता और ब्रह्मभूत स्थिति और ब्रह्मभूत स्थिति की उपलब्धि उसका वर्णन है। और इस दूसरा अध्याय में हृदय में भगवान कैसे भगवान सबके हृदय में विराजमान होते हैं और इसके इस स्कंध के पहला अध्याय वो विराट रूप का वर्णन होते हैं। तो इस तो कैसे भगवान विराट रूप में विराट रूप नहीं है, विराट रूप है, ऐसे नहीं है कि भगवान वो रूप के अंदर नहीं है, ऐसे नहीं, भगवान के रूप भगवान से भिन्न है। ऐसे नहीं है कि बद्ध जीव जैसे एक भौतिक आकार है, शरीर है और उसके अंदर में आत्मा है, तो ऐसे नहीं है कि भगवान का रूप है और भगवान के अंदर में भगवान का आत्मा है। नहीं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान का रूप सच्चिदानंदमय है और भगवान का रूप और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का रूप भगवान है, भगवान का नाम ही भगवान है, भगवान के गुण लीला सब भगवान से भिन्न है। तो वो विराट रूप भगवान का एक रूप है, तो सभी ब्रह्मांड एक प्रकार से भगवान का रूप है। तो भगवान विराट है और भगवान बहुत ही छोटे के हैं, अनवरणीय महत्वमय वो अणु में प्रवेश करते हैं और महान विराट रूप भी है भगवान। तो ऐसे भगवान अपर्याप्त और अचिंत्य है, अपर्याप्त असीम सामान्यता जब हम असीम शब्द को सुनते हैं हम सोचते हैं विराट विशाल, तो असीम ऐसे होते, असीम मतलब एक शब्द है संस्कृत में अप्रमेय, मतलब माप करना संभव नहीं, तो एक ही प्रकार असीम शब्द समझ में। लेकिन दूसरे प्रकार से भी इतना छोटा भी है कि कितना छोटा है उसको माप और चिंतन करना संभव नहीं, तो भगवान वैसे है। अगर हम सोचे कि परम सत्य असीम है इसलिए विशाल है और खाली विशाल है, तो वो भूल है, क्योंकि विशाल है और बहुत बहुत ही छोटे है। तो ऐसे भगवान अचिंत्य है क्योंकि विशाल है और ऐसे अप्रमेय है, अपर्याप्त है और बहुत ही छोटे है। तो कैसे है हम समझ नहीं सकते, ऐसे अचिंत्य मतलब हमारे कल्पना के अतीत होते, कैसे एक वस्तु जो बहुत ही छोटे होते हैं तो फिर भी विशाल होते, तो कैसे एक वस्तु में ये दो गुण उपस्थित हो सकते, विशाल है और छोटे है। लेकिन भगवान विशाल है और बहुत 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 ही छोटे हैं, तो अगर हम सबसे वो संभव नहीं है, वो सही है हमारे लिए संभव है, लेकिन असीम परम सत्य असीम है और असीम का मतलब तो सभी प्रकार असीम है और हमारे बुद्धि के अतीत है। हम कस आधुनिक जमाने में आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक सभी वस्तुओं को माप करना चाहते हैं, हम साइंटिस्ट, माप करने से सब कुछ सभी वस्तुओं को समझना चाहते हैं। लेकिन ऐसे फिजिक्स मैथमेटिक्स के द्वारा भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान को मापना संभव नहीं है। तो पहले अध्याय में भगवान का विराट रूप का वर्णन था और इस अध्याय में भगवान कैसे सबके हृदय में विराजमान होते हैं और कैसे भगवान सब अणु के अंदर में भी विराजमान है, इसका वर्णन होगा। इसका वर्णन है क्योंकि हम ये बात भूल किए हैं, एक्चुअली ये ज्ञान सभी जीव के स्वाभाविक ज्ञान है, क्योंकि सब जीव का जीव की मूल अवस्थ है जागृत सच्चित आनंदन, सच्चित आनंदमय, इसका मतलब सनातन ज्ञानवान और आनंदमय। लेकिन क्योंकि हम विपरीत अवस्था में हैं, भौतिक अवस्था में है, भगवान को भोग अभी हम असनातन अज्ञान और निरानंद अवस्था में हैं, क्योंकि हम सबसे इस शरीर में हूं और सभी प्राकृतिक शरीर भौतिक शरीर नश्वान है, ज्ञानहीन है, आध्यात्मिक ज्ञानहीन है और निरानंद है। तो ये विस्मृति बनती, भगवान को बोल करना विस्मृति बनने और भगवान के बारे में श्रवण करने से, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उदय, भगवान के बारे में सुनने से पुनर्स्मृति होती है, कैसे भगवान भगवान है, कैसे हम इनके भक्तों हैं, कैसे इनकी सेवा करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी इतने महान व्यक्ति, तो केवल भगवान को बहुत नहीं करते हैं, तो अपना काम भी बहुत करते। हर रोज ब्रह्मा जी सृष्टि करते, तो कभी एक बार नहीं, ब्रह्मा जी के हर एक दिन सृष्टि कार्य करते। ब्रह्मा जी के दिन हमारे परिप्रेक्ष्य बहुत लंबा है। ब्रह्मा जी के दिन में पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि होते, पालन होते और संहार होते। पूरा ब्रह्मांड का संहार का समय ब्रह्मा जी का निद्रित होने का समय, और ब्रह्मा जब फिर जागृत होते फिर उठते हैं फिर सृष्टि करते। लेकिन सोने का समय सब कुछ भूल करते, फिर भगवान के चरणों में ध्यान करते और भगवान उनको प्रेरित करते और ज्ञान देते, तो कैसे सृजन करना है। तो ये जीव का लक्षण है कि जीव की बुद्धि और जीव का ज्ञान सीमित है, और जीव का स्वभाव है वो ज्ञान भोग करना। लेकिन भागवत सब कुछ जानते, वेदां सब गीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेदं कश्चन। कृष्ण कहते हैं गीता कि मैं सब कुछ जानते, भूत भविष्य और वर्तमान काल तीनों काल तीन काल में मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन कोई मुझको चीजें नहीं जानता। जब कृष्ण अर्जुन को बताया कि मैं प्राचीन काल में विवस्वान को बताया भगवद गीता के, तो अर्जुन आश्चर्य लग रहा, तो कैसे संभव है, तुम मेरे दोस्त हो, हम तो एक ही उम्र है, तो कैसे आप प्राचीन काल में विवस्वान को यही ज्ञान देता। तो श्री कृष्ण उत्तर में बोले थे बहुन मेरी व्यतीता नहीं जमानी था विचार जो था नहीं हम वेद सर्वाणी क्या था नहीं हम वेद सर्वाणी नाचवान वेद पदम मेरे मेरे और तुम्हारा बहुत जन्म हुए थे, सब कुछ मैं स्मरण करता हूँ, और तुम क्योंकि तुम जीव हो तुम बहुत करते हो, और क्योंकि मैं जीव हूँ और बहुत कम बुद्धि जीव हूँ, इसलिए मैं हमेशा श्लोक बहुत करता हूँ। श्लोक बोलने के बीच में जीव का स्वभाव है, क्योंकि मैं भगवान हूँ कृष्ण बोलते हैं, मैं सब कुछ स्मरण करता हूँ, क्योंकि तुम जीव हो तुम सब कुछ विस्मरण करते हो। तो कभी कभी भक्तों हमारे पास आते हैं बोलते कि मैं बार बार शास्त्र पढ़ता हूँ लेकिन उसका याद नहीं होता, क्या करूं। तो शास्त्र पढ़ो भगवान का स्मरण होगा। अगर हम सब सभी विषय सब जीते हैं स्मरण नहीं करते तो वो दोष नहीं है, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति की स्मृति शक्ति बहुत होती है और किसी के स्मरण शक्ति कम होते हैं। लेकिन हम भगवत शास्त्र करते हैं जैसे कि कम से कम सामान्य भगवत स्मरण होगा, पांडित्य से भगवत प्राप्ति नहीं होते हैं भक्ति से। तो भगवत करने से हम हमें आशा है कि हम भगवान का स्मरण करेंगे और भगवान की भक्ति में लगेंगे। हरे कृष्ण। इसके बारे में कई प्रश्न है,
ये
ऐसा बोला था आप थोड़ा लेक्चर में उपस्थित हैं। हाँ तो ऐसा बोला था कि स्वर्ग लोक में श्रीमद् भागवत जो पूरे याद नहीं कितने हैं, एक दो या तीन लाख श्लोक श्रीमद् भागवत जो स्वर्ग लोक में मिलते हैं। और हम सोचते हैं कि भागवत बहुत लंबा शास्त्र है, विशाल शास्त्र है, लेकिन वो भागवत जो इस पृथ्वी में इस काल में है वो स्वर्गीय भागवत से बहुत छोटे है। कम से कम छात्र संदर्भ में जीव गोस्वामी ऐसे नहीं थे। ऐसे बोला था कि गुरु और सुखदेव गोस्वामी जब भगवत कथा बोले इनके गुरु और परम गुरु उपस्थित है, उपस्थित है वो सब कुछ श्रवण किए आनंद से। एटिकेट वाइज थोड़ा आश्चर्य है, लेकिन प्रभुपाद भी वैसे कभी कभी करते थे, भक्तों इनके शिष्यों को आदेश दिया भगवद्गीता प्रवचन कर, और प्रभुपाद स्वयं आते थे सुनने के लिए। तो अगर गुरु आदेश देते हैं या अगर गुरु चाहते हैं शिष्यों की कथा सुनने, तो शिष्यों का कर्तव्य है आदेश पालन करना। जैसे कि वो चैतन्य चरितामृत में एक कहानी है, वल्लभ भट्ट चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे कि जीव प्रकृति है और भगवान पुरुष है। तो जीव पुरुष की स्त्रियां जैसे है, और स्त्रियां का कर्तव्य है स्वामी का नाम नहीं बोलना, लेकिन तुम हमेशा कृष्ण नाम बोलते तो दोष है, कृष्ण नाम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जीव भगवान की प्रकृति स्त्री जैसे है। तो उत्तर में चैतन्य महाप्रभु बोले कि जो आप बोलते वो सही है, लेकिन स्त्रियों का कर्तव्य है पति का आदेश पालन करने, और कृष्ण का आदेश है सभी जीवों को उनका नाम जाप और कीर्तन करने। तो अगर पति आदेश देते मेरा नाम लो, तो स्त्री का कर्तव्य है वो आदेश पालन करने। तो अगर सामान्यता शिष्य गुरु से सुनते, लेकिन सुनने के बाद अगर अच्छी तरह सुनते तो गुरु की कृपा से इतना अच्छा बोल सकते, बढ़िया बोल सकते कि गुरु भी आकृष्ट होते शिष्य की कथा सुनने के लिए। अगर हम सोचते कि शिष्य सोचते नहीं गुरु का दास, गुरु जैसे महान नहीं है, योग्यता विचारे खिंचो नहीं पाए तुम्हारा कौन नशा। शिष्य सोचते है कि अगर मेरी कुछ क्षमता है भक्ति बोलने के लिए तो कली गुरु की कृपा है, और ऐसे सोचना सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी शिष्य गुरु से, आपने गुरु से कम शक्तिमान होंगे। अगर ऐसे होते था तो परंपरा तो हर पीढ़ी में और कमजोरी हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज के शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि सब कुछ जो मिला था गुरु कृपा से मिल गया, लेकिन इनकी शक्ति, और ऐसा नहीं बोलना चाहिए इनकी शक्ति गुरु की शक्ति से ज्यादा थी, लेकिन गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज इतना सब प्रचार नहीं किए थे, इतना शक्ति प्रकट नहीं किए। हमारे सामान्य दृष्टि में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के उपहार, आध्यात्मिक उपहार जगत जो 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 जगत को दिया, तो गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज से और बहुत अधिक है। गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज की कृपा से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आदि का मिले ऐसे प्रचार करना। तो ऐसे भगवान की कृपा से इनके भक्तों इनसे और ज्यादा काम कर सकते, जैसे कि रामचंद्र भगवान कुछ आश्चर्य लीला प्रकट किया, वो एक सेतु बनाए बड़ा पत्थर से और ऐसे ब्रिज ब्रिज से जाकर लंग लगाए, तो वो आश्चर्य है, तो कैसे राम ऐसे सेतु बनाए। लेकिन हनुमान के लिए ऐसा ब्रिज का कोई जरूरत नहीं, तो अपनी शक्ति से भारत से लंका जंप, क्या बोलते हैं, जंप छिलाना छलन जंप किया है। तो कौन बड़ा है, राम या हनुमान, बोलना मुश्किल है। राम की कृपा से हनुमान राम से और अधिक आश्चर्य लीला प्रकट की, ज्यादा शक्ति प्रकट की। तो ऐसा कहानी है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन ऐसा कहानी है कि लंका जाने के पहले रामेश्वरम में भगवान रामचंद्र शिव की पूजा, तो इसका क्या अर्थ है, शिव राम से बड़ा है, शायद राम की दृष्टि में शिव बड़ा है, लेकिन शास्त्रीय सिद्धांत है कि राम शिव से बड़ा है, क्योंकि राम भगवान है और शिव भी भगवान है, लेकिन थोड़ा पृथक रूप में है। तो कौन भगवान, विष्णु राम, लेकिन राम स्वयं इनके भक्तों की पूजा कर सकते, तो वो ही प्रमाण नहीं है कि शिव राम से बड़ा है, क्योंकि शिव भी राम की पूजा करते हैं।